ईशानी की याद आने पर रुद्राक्ष उसे देखने के लिए नीचे वाले कमरे में गया था। कुछ पल ईशानी के साथ बिताने के बाद रुद्राक्ष वापस ऊपर आ चुका था। उसके चेहरे पर हल्के सुकून के भाव थे। पिछले दो दिनों से रुद्राक्ष ने ठीक से ईशानी का चेहरा तक नहीं देखा था और अब उससे मिलने के बाद उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया था। ऊपर आते ही रुद्राक्ष ने अपनी सेफ खोली जिसके अंदर एक डायरी थी। रुद्राक्ष ने वो डायरी निकाली। वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि ईशानी की डायरी थी। रुद्राक्ष इस डायरी को देखते हुए धीरे से बोला, पता नहीं क्यों इसे जलाने की हिम्मत ही नहीं हुई और ना ही कभी इसे खोलकर पढ़ने की। तुमने तो ध्यान तक नहीं दिया कि उस दिन मैंने जो डायरी जलाई थी वो एक नई डायरी थी, बिल्कुल उसी तरह की दूसरी नई खाली डायरी। डायरी रुद्राक्ष के सामने पड़ी थी और वो उसे देखकर खुद से बात कर रहा था। अचानक ही रुद्राक्ष के दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हो गई थीं, जब डायरी जलने पर ईशानी बहुत जोर जोर से रोने लगी थी और उसने गुस्से में रुद्राक्ष को थप्पड़ तक मार दिया था। अचानक ही रुद्राक्ष का हाथ अपने गाल पर चला गया और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहीं तो ये लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे और मैं इन्हें नहीं रोक पाऊँगा, जैसे अपनी मॉम के वक्त में ही रोक पाया था। मोक्ष को लगता है कि वो मॉम के पास रहते हुए उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि ज़रूरी नहीं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ ही होना ज़रूरी है। मैं यहाँ हूँ तो कम से कम इन लोगों के नेक्स्ट स्टेप के बारे में मुझे पता होता है। कई बार ज़िंदगी आपको इतना मजबूर कर देती है कि आपको आपके चाहने वालों से दूर रहना पड़ता है, जैसे अब मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़ रहा है। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला भी गया तो विक्रांत खुराना कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनके बिज़नेस की नींव हूँ मैं और वो उसे इतनी आसानी से हिलने नहीं देंगे। और तुम यहाँ रही तो ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। खुद से बातें करते हुए रुद्राक्ष की आंखें नम हो रही थी। वो खुद को काफ़ी लाचार महसूस कर रहा था। वो रुद्राक्ष खुराना जो दुनिया के सामने अपनी फैमिली की शील्ड के तौर पर खड़ा रहता था, उन्हें प्रोटेक्ट करता था, जबकि असल सच्चाई उसे बिल्कुल अलग थी। वो अपनी फैमिली को नहीं बल्कि अपनी फैमिली से अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा था। रुद्राक्ष ने डायरी को देखने के बाद उसे बिना पढ़े ही वापस सेफ में रख दिया। उसके बाद वो उठकर सोने के लिए जा चुका था। अगली सुबह ईशानी की आँख खुली तो सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। वो रुद्राक्ष के साथ होती थी तब उसके अलार्म के साथ उसकी भी नींद टूट जाती थी। ईशानी ने उठकर घड़ी में टाइम देखा तो उसकी आँखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो जल्दी से बोली, हद है यार, मैं इतनी देर तक सोती रह गई और मुझे किसी ने जगाया तक नहीं। बोलते हुए ईशानी के चेहरे पर उदासी आ गई। फिर उसने मायूसी से कहा, कोई है भी तो नहीं जगाने वाला, यहाँ खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा ईशानी। ईशानी बिस्तर से खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। वहीं ऐसा ही कुछ हाल रुद्राक्ष का था। वो देर तक सो रहा था और जब सुबह उसकी नींद देरी से खुली तो वो इरिटेट होकर बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है वाइफी, जब तक मैं ना उठूं तब तक अलार्म बंद मत किया करो, अब तुम्हारी वजह से मुझे उठने में। बोलते हुए रुद्राक्ष ने बेड की दूसरी तरफ देखा जहां ईशानी नहीं थी, तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कई बार ईशानी को देर तक सोना होता था तो वो अलार्म बंद कर देती थी, तो आज भी रुद्राक्ष को लगा कि ईशानी ने ही अलार्म बंद किया है, जबकि नींद में उसने खुद ऐसा किया था। नहीं, मुझे तुम्हारी आदत नहीं लगानी है, ऐसे ही इस दिल में इतने दर्द है, मैं एक और दर्द के साथ नहीं जीना चाहता, रुद्राक्ष ने चेहरे के भावों को सख्त करके कहा और उठकर बाथरूम में चला गया। उसका ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने का कोई मूड नहीं था। किचन में जाकर जब रुद्राक्ष ने फ्रिज खोला तो एयरटाइट 4 से 5 बॉक्स पड़े थे जिनमें स्टोर किया हुआ खाना रखा हुआ था। रुद्राक्ष ने उनमें से एक बॉक्स निकाला, उसके ऊपर ईशानी का नोट लिखा हुआ था, आई नो आपको लेट तक काम करने की आदत है और कई बार भूख लगने पर आप नूडल्स खाते हो, नूडल्स के बजाय आप इन्हें खा सकते हो, ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी। उसे पढ़ते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो बॉक्स को लेकर बाहर आ गया था। माया और पूरी खुराना फैमिली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इतनी नफरतें के बावजूद रुद्राक्ष और ईशानी के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन चुकी थी। रुद्राक्ष की तरह एक ही दिन में ईशानी को भी काफी अकेलापन महसूस हो रहा था, उससे बात करने वाला तक कोई नहीं था। कहते हैं जब इंसान अकेला हो तो वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है या फिर सबसे ज्यादा मजबूत। ईशानी नहाकर बाहर आई तो उसे भी बहुत भूख लगी थी, कल पूरे दिन से उसने कुछ भी नहीं खा रहा था। ईशानी ने खाली कमरे की तरफ देखते हुए मायूसी से अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, जरूर हाउस हेल्पर मेरे लिए खाना लेकर आई होगी और मेरे रूम न खोलने पर वापस चली गई। अब किससे कहूँ, मुझसे और नहीं झेला जा रहा है, मैं क्यों उनकी मनमानियों को सहन कर रही हूँ, मुझे मेरे पति के साथ रहने का पूरा हक है और ये मुझे रोक नहीं सकती हैं। और रुद्राक्ष, वो क्यों इनका फेवर कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है, चाहे जो भी हो जाए मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अगले ही पल ईशानी ने खुद को मजबूत किया और सख्ती से कमरे से बाहर निकली। खुराना फैमिली का लंच हो चुका था। दिव्या और माया बाहर लिविंग रूम में बैठी थी, आलिया हमेशा की तरह बाहर शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी और विक्रांत ऑफिस। ईशानी को बाहर देखकर माया ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कमरे से बाहर आने से मना किया था, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो इंटरकॉम पर कॉल कर देती या फिर किसी को बुला लेती, चलो वापस अपने कमरे में जाओ। ईशानी ने अपने हाथ बांधे और माया की तरफ देखकर सख्त अंदाज में कहा, और मैं क्यों मानूं आपकी बात, नहीं होती कौन है आप मेरी लाइफ के डिसीजन लेने वाली। ईशानी की बातों ने माया के गुस्से को बढ़ा दिया था, तो वहीं दिव्या भी उसके तेवर देखकर हैरान थी। वो दोनों उठकर ईशानी के पास आईं। शिवानी ने ईशानी की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, देख रही हैं मम्मी जी आप इसके तेवर? इसे यहाँ आए हुए टाइम ही कितना हुआ है और आपके साथ बदतमीजी कर रही हैं। आप चाहो तो मैं आपके साथ भी बदतमीजी कर सकती हूँ, आपको लेफ्ट ओवर फील नहीं होगा उससे, ईशानी ने दिव्या की बात के जवाब में कहा। माया पहले चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, फिर उसने ईशानी की कलाई को कसकर पकड़ा और उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, हमने रुद्राक्ष के चलते तुम्हें सारी फैसिलिटी देने का डिसीजन लिया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमने तुम्हें इस घर की बहू मान लिया है। अगर यही बदतमीजियां चलती रहीं तो एक दिन खाने के लिए भी तरस जाओगी। ईशानी ने पूरा जोर लगाकर माया का हाथ झटका और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बिना डरे कहा, मुझे इस घर की बहू बनना भी नहीं है। आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ बदतमीजी ना करूं तो मुझे रोकिएगा मत, मैं रुद्राक्ष से बात करने जा रही हूं और वो मैं करके रहूंगी। हमारे होते हुए तुम रुद्राक्ष का चेहरा तक नहीं देख पाओगी, चुपचाप अपने कमरे में जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, माया ने जोर से चिल्ला कर कहा। ट्रस्ट मी आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, ईशानी ने जवाब दिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने को हुई, तभी माया ने उसका हाथ पकड़ा ताकि उसे रोक सके। गुस्से में ईशानी ने अपना हाथ छुड़ाया और माया को धकेल दिया। ये तो दिव्या उसके पास थी इसलिए उसने माया को पकड़ लिया, वरना वो नीचे गिर जाती। ईशानी की इस हरकत पर माया पीछे से बहुत जोर से चिल्ला कर बोली, हम कह रहे हैं अपने कदम वहीं पर रोक लो लड़की, वरना हम इन्हें काट कर रख देंगे।
ईशानी ने माया की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने ये तक ध्यान नहीं दिया था कि उसने कितना जोर से माया को धकेला था या दिव्या ने उसे संभाल लिया था। ईशानी लिफ्ट में थी और कुछ ही देर में रुद्राक्ष के सामने। रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठकर किसी क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर था, तभी उसके सामने ईशानी आई। रुद्राक्ष ने जल्दी से कॉन्फ्रेंसिंग को खत्म करते हुए कहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क। उसने जल्दी से मीटिंग को ओवर किया और फिर ईशानी के पास आकर हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी ने तुम्हें ऊपर आने से मना किया था, मुझे आपसे बात करनी है और आप इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ईशानी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखकर जवाब में कहा। उसे इस वक्त किसी का डर नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष ने उसकी बात पर हामी भरी। वो ईशानी के साथ केबिन से बाहर आ ही रहा था कि तभी उसके पास दिव्या का कॉल आया। उसने कॉल पर रोते हुए कहा, रुद्राक्ष तुम जल्दी नीचे आओ, देखो तुम्हारी पत्नी ने मम्मी जी के साथ क्या किया है, उन्होंने तो बस उसे तुमसे बात करने से रोका ही था और बदले में उस ईशानी ने उनके साथ, बोलते हुए वो रोने लगी और सुबकते हुए कहा, तुम बस खुद नीचे आकर देख लो। दिव्या से बात होते ही रुद्राक्ष ने सर्द निगाहों से ईशानी की तरफ देखा। ईशानी हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर पहले वो उससे काफी सॉफ्टली बात कर रहा था और अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। रुद्राक्ष ने गुस्से से ईशानी पर चिल्लाकर कहा, क्या किया है तुमने मेरी दादी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है, वो भी मेरे साथ में बदतमीजी कर रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारे पैर काट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मुझे बस तुमसे मिलना था। ईशानी अपनी सफाई पेश किए जा रही थी तभी रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आया। रुद्राक्ष और ईशानी नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा माया की कमर पर बेल्ट लगा हुआ था और हाथ पर लगी खरोचों पर दिव्या बैंडेज लगा रही थी। रुद्राक्ष को देखते ही माया ने धीरे से कहा, आज तक इस घर में हमारे लिए फैसले ही आखिरी होते थे, लेकिन अब सब बदल गया है, हमने बस इसे तुम्हारे पास जाने से रोका था और इसने हमें धकेल दिया। जब माया नीचे गिरी थी तब उसे दिव्या ने संभाल लिया था, लेकिन माया ने उसे भी धकेल दिया और जानबूझकर नीचे गिर गई। ये सब उसने ईशानी को रुद्राक्ष की नज़रों में गिराने के लिए किया था। रुद्राक्ष ने सर्द निगाहों से ईशानी की तरफ देखा तो वो ना में सिर हिलाकर बोली, ये झूठ बोल रही है रुद्र, आप मेरी बात का यकीन करो, इनको दिव्या अंत्री ने संभाल लिया था। फिर भी ये ईशानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर ले जाने लगा। वो जिस तरह से ईशानी को लेकर जा रहा था, माया और दिव्या समझ गई थी कि जरूर ऊपर कुछ बड़ा होने वाला है। उनके जाते ही माया ने कहा, क्या लगा था इसे कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर रुद्राक्ष से मिल पाएगी? मिलना तो होगा, लेकिन अलग तरीके से। हम रुद्राक्ष को अच्छे से जानते हैं, वो इसे इसके किए की बहुत बुरी सजा देने वाला है। बस यही दुआ है कि नीचे इस लड़की की लाश ना आए।